ओम शांति। तो आज हम सबके बीच आदरणीय सरोज दीदी जी हैं। तो सरोज दीदी जी, आप सब जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर के स्पार्क जोनल कोऑर्डिनेटर है, और दीदी जी की विशेषता है कि हर स्पार्क की एक्टिविटी में, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, भट्टी हो, तो अवश्य उनका प्रेजेंस होगा, उनका सहयोग ज्ञान और योग की पालना से होती ही है। सरोज दीदी जी जो वसंत कुंज द्वारका और कनेक्टेड सेंटर्स के डायरेक्टर हैं, 1968 से उन्होंने समर्पित रूप से बाबा की इसमें घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और परमानेंट मैनेजमेंट फैकल्टी ब्रह्मा कुमारीज के, तो फॉर्मर रीजनल एसोसिएट कोऑर्डिनेटर मेडिकल विंग के हैं। एक्सेलेंट सर्विस अवार्ड मिला है, क्योंकि उनकी सर्विस सिर्फ स्पार्क में सीमित नहीं है, स्पार्क के अलावा उनकी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेस, खास करके इफको के, जो बहुत ही रेगुलर बेसिस में यहाँ पर हेडक्वार्टर्स पे भी आते हैं, और दीदी जी भी वहाँ उनके ऑफिस प्रीमिसेस में जाकर के कोर्स कराते हैं, ऐसे विविध भिन्न भिन्न कोर्स कराते हैं, और अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी ही वक्ता से अनेक आत्माओं को प्रेरणा देते हुए बाबा के घर में लेके आए हैं, बाबा के बच्चे बनाए हैं। तो स्पिरिचुअल सर्विस में जो है दीदी जी का पहला कदम होता है, जैसे बाबा ने कहा कि सेवा करो, सेवा से ही आपको उन्नति होगी, सेवा से ही आपको पद प्राप्त होगा। तो सरोज दीदी जी की ये विशेषता है कि सर्विस में फर्स्ट कदम होता है, उनका पहला कदम होता है। तो आज दीदी जी से हम सुनेंगे चलन और चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता। आदरणीय सरोज दीदी जी।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सभी स्पार्कलर्स, बाबा के डायमंड बच्चे अपने प्यारे डायमंड हॉल में पहुंच गए हैं। आप सबको मुबारक हो, क्योंकि हमारी बड़ी बहनों का हमेशा संकल्प रहता है कि डायमंड हॉल में एक दिन इस पार्क की सभा लगेगी। उसकी शुरुआत आप सब ने कर दी है, और अब जो हमारा विषय है, इन्होंने बताया चलन और चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता। तो अभी हम, जब ये विषय हमें दिया गया तो इस पर चिंतन चला कि जब हम शुरू शुरू में, आप देखते हैं कि बाबा ने बताया कि मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है, और जिसका बीज स्वयं भगवान है। तो इस कल्प वृक्ष का बीज, बीज में, बीज और जड़ में हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो आप देखेंगे नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि बीज से जड़ निकलता है, फिर तना, फिर शाखाएं, प्रशाखाएं, और फल फूल, पूरा ही पेड़ निकलता है। तो बीज अपने आप में संपन्न भरपूर स्टेज का नाम है, जिसके अंदर पूरा वृक्ष समाया है। तो बाबा हमारा बीज स्वरूप है, और आदि में हम ब्रह्मा बाबा के साथ, आदि देव के साथ ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बैठे हैं। तो आप सब ने देखा कि पहले हमेशा बीज से झाड़ निकलता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वृक्ष की एज पूरी हो जाती है तो फिर उसके ऊपर बीज आ जाता है, और वो अगले वृक्ष की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो बीज ने झाड़ को प्रत्यक्ष किया, झाड़ फिर बीज को ऊपर ले आता है। तो बाबा ने, निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, पहले शुरुआत थोड़े से हुई, थोड़े से ब्राह्मण बच्चे थे, आज वट वृक्ष का विस्तार ले चुका है ये परिवार। तो बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए, शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं अव्यक्त हो गए। अब बाबा अव्यक्त रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जब बीज गुप्त होता है, आप देखेंगे जब तक बीज धरती की सतह के ऊपर होगा तो उसमें से पेड़ का विस्तार नहीं हो सकता। जब बीज पूरी तरह से अपने को छिपा लेता है तब उसमें से पेड़ का विस्तार होता है। तो बीज ने स्वयं को गुप्त किया और इतनी सारी सेवाओं का विस्तार हुआ। और आज वो समय आ पहुंचा है कि अभी आदि सो अंत। तो अभी हमारे द्वारा, यानी जो वृक्ष का विस्तार हुआ है, हम सब बाबा के बच्चे, हमारे अंदर इस प्रकार की दिव्यता हो, पवित्रता हो, शालीनता हो, सभ्यता हो, रूहानियत हो, रुहाब हो, जो हम बीज बाप को प्रत्यक्ष कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेवाओं का विस्तार तो बहुत हो गया है और बाबा हमेशा, क्योंकि जब भी सुनते हैं लोग यही कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनकी संस्था बहुत अच्छी है, इनमें वैल्यूज़ बहुत हैं, इनमें ट्रांसपेरेंसी है, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से समाज की सेवा में लगी हैं, ये एक आध्यात्मिक संस्था है जो बहुत ऊंचा कार्य कर रही है, बहुत सारी सराहना करते हैं हमारे विश्वविद्यालय के बारे में, हमारी बहनों के बारे में। लेकिन बाबा ने जो ये कहा है कि ये तो वो लोग कहते हैं कि संस्था बहुत अच्छी है, कार्य बहुत अच्छा कर रही है, पर इनको बनाने वाला भी बहुत अच्छा है, स्वयं भगवान इनको पढ़ा रहा है, वो धरती पर आ चुका है। बच्चे ये बात अभी तक आपके द्वारा सिद्ध नहीं हुई है, तो मतलब आत्म बॉम्ब तो छोड़ा है आपने, लेकिन परमात्म बॉम्ब नहीं छोड़ा। और जब तक, क्योंकि वो कहते हैं ये संस्था अच्छी है, और कभी कभी वो लोग ये भी कहते हैं कि और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऑलमोस्ट आप जैसा कार्य करती हैं, परंतु उनको, उनके मुख से ये निकले कि यही है, यही है, यही है। केवल गति सदगति मिल सकती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है तो परमात्मा बाप के द्वारा, और परमात्मा बाप स्वयं यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं, इस बात की प्रत्यक्षता बाकी है। ये ठीक बात है? जो समझते हैं ठीक है वो हाथ उठाएं, जरा लंबा हाथ उठाएं। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि इस बात को हम प्रत्यक्ष करें। तो इसका मतलब सेवाओं का विस्तार तो बहुत हुआ है, अब बाकी काम क्या रह गया है? क्योंकि बाबा ने कहा तुमने मेले भी किए, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम भी किए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की, वर्कशॉप्स भी हो गई, डायलॉग भी हो गए, बहुत कुछ हुआ और लाखों बच्चे भी निकले। अब जो बाबा चाहता है मेरे बच्चे अपने स्वरूप के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें, उनके मुख से निकले कि ही इज़ अ गॉड्स मैन, ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का दूत है, आपके स्वरूप से आपका स्वरूप दिखाई ना दे लेकिन बाप का स्वरूप दिखाई दे, अब आप बताएं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अभी बात निकली थी ना कि पहले हम विस्तार में गए, अब हमें अपने आप को विस्तार से कहाँ लाना पड़ेगा, कहाँ लाना पड़ेगा, सार में। तो जब विस्तार अपना पूरी तरह से वृक्ष का विस्तार हो जाता है, फिर ऊपर में बीज आ जाता है। तो बीज रूप बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें भी अपने आप को सार स्वरूप में स्थित करना जरूरी है, और उसके लिए अपने आप पर काम करना जरूरी है। अभी तक हम बड़ा प्लानिंग करते हैं, सेवाओं की प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे जितना आपकी बुद्धि प्लेन होगी, शांत होगी, उतना आप प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, ऑटोमेटिक प्लानिंग होगी। लेकिन अगर बुद्धि में कहीं हलचल है तो आप देखेंगे आपका जो प्लानिंग होगा उसमें जिस रेट में सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपको अपने पर फोकस करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो जब उन्होंने शुरुआत किया, इस क्षेत्र में कदम उठाया, तो अपने आप से शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिख लिख कर अभ्यास किया, अच्छी तरह से लिखते रहते थे बाबा, तपस्या की इस बात पे, और रिजल्ट ये हुआ कि उनके स्वरूप से जो भी उनको देखता था, उनका उनको दैहिक रूप दिखाई नहीं देता था, पर उनसे उनको संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होता था। तो देखो, बाहर वालों को पढ़ाना तो आसान है, लेकिन अपने परिवार वाले जो आपकी हर एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो जब तक आपके स्वरूप से दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो उनके अंदर में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। तो बाबा ने लौकिक परिवार से काम शुरू किया, और देखिए लौकिक वाले जितने भी थे, चाहे बाबा की लौकिक बहू थी या बाबा की लौकिक पुत्री थी, बच्चे थे, लौकिक पत्नी, हरेक को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, क्योंकि बाबा बस नशे में रहता था और श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर बाबा को नशा चढ़ जाता था, मैं कल ये बनूंगा, 100% निश्चय था, मैं कल ये बनूंगा, मिचनू बनूंगा। और इतना नशा, नारायणी नशा, जो उनके स्वरूप में ये वृद्ध शरीर दिखाई नहीं देता था, श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता था। बहुत सारी बांधेली गोपिकाएं बाबा के पास आती थी, जिनके लौकिक पति ये भी कहते थे कि भाई आप पर पुरुष के पास क्यों जाते हो, लेकिन वो उनको कहते थे कि आप एक बार चलें, और जैसे वो बाबा के सामने आते थे, दृष्टि लेते थे, दृष्टि लेते ही वो बाबा की गोद में अनायास चले आते थे, और उसी समय उनको निश्चय हो जाता था कि भगवान इनके तन में आया हुआ है। ऐसा स्वरूप हमारा बन जाए, जैसे बाप का स्वरूप वैसे ही बच्चों का स्वरूप। तो जो जो हम हमारे बाबा ने अभ्यास किया, वही अभ्यास हमको करना है, और उसके लिए अपने पर फोकस करना है। अपने पर फोकस करने का मतलब है अंतर्मुखी बनना जरूरी है। अंतर का मतलब है अंदर, और मुख का मतलब देखना, अंदर की तरफ देखना। अंदर में जो आत्मा है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर देखना, बोलना, बातचीत करना, व्यवहार में आना, मिलना, खाना पीना चलना, आत्मिक स्वरूप में करना, वो है अंतर्मुखता। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, और बाह्य मुखी वो तो आप ही बताएंगे, है ना। तो अंतर्मुखी बनकर अपने आप पर हम काम करें, और उसके लिए हम मेरा जो चिंतन चला बाबा की जो मुरलियाँ हम इतने सालों से सुन रहे हैं, उसके लिए हम एक का पाठ पक्का कर लें। एक पहले क्या चाहिए? एकांतवासी, एकांतवासी। आप देखेंगे जो अच्छे स्टूडियस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपको भीड़ में नजर नहीं आएंगे, वो आपको दिखाई ही नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं अलग बैठ के अपना अध्ययन करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम संगठन में ना आए, लेकिन संगठन में रहते हुए भी एक के अंत में खो जाएं, अपने आप पर काम करें। तो एकांत, एकांतवासी, जैसे बाबा एकांतवासी बन के अपने आप से बातें करते थे। अभी हमें अपने से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता है, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सेल्फ पर काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो जितना हम एकांतवासी होंगे, और उसमें फिर बाबा ने कहा जब जब समय मिले बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, क्योंकि आज भी बाबा ने मुरली में एक ही बात कही है। क्या कहा? कि अगर आप ऊंच पद पाना चाहते हैं तो क्या करें, किसी भी तरह का शौक नहीं होना चाहिए, ज्यादा खाने का, पीने का, पहनने का। बाह्य मुक्ता में जब हम कुछ भी बात करते हैं, क्योंकि आप बेहद के सन्यासी हैं, बुद्धि से देह और देह की पुरानी दुनिया का सन्यास, कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित न करे। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, पर इसका अभ्यास। ये देह क्या दिखाई दे, अलग है, और मैं आत्मा अलग हूं। और जब भी बाबा ने कहा बीच बीच में समय मिले ऐसा अभ्यास करें, अपने पर काम करना है, क्योंकि जो हम अंदर में हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आपके चेहरे से आपका आंतरिक व्यक्तित्व छलकता है। तो जितना हमने अंदर से अपने पर काम किया होगा, और बाबा ने कहा उसके लिए समय ना भी मिले बच्चे, कुछ सेकंड समय मिलता है, मिनट समय मिलता है, अपने को पॉज दें और फिर अपने आप से डिटैच होने का अभ्यास करें। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी देह में आके कर्म क्षेत्र पर कर्म करना, और सदा कर्म करते भी याद रहे मैं परमधाम निवासी आत्मा हूं, बिंदु स्वरूप हूं, बस केवल कर्म के लिए आई हूं, मुझे वापस लौटना है। बार बार ये अभ्यास बाबा ने कहा कम से कम, क्योंकि निराकार बाप के लिए हमें निराकार स्थिति का अभ्यास चाहिए, और जो हमारा ब्रह्म बाबा है उसके लिए फरिश्ता स्थिति का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने कहा दिन में अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, और अभी अभी निराकारी, ऐसे बहुत काल का अभ्यास आपको अंत में विजयी बनाएगा। ये नहीं है कि हम सोचें कि हाँ अंत में हम बन जाएंगे, नहीं, अंत में नहीं, अभी से बार बार अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा कम से कम 12 बारी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो दिन में, 12 बार निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। तो बाबा का कहने का मतलब है कि रोज रोज का अभ्यास करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। जब आप रोज रोज इस संकल्प के साथ एकांत में इस चीज का अभ्यास करेंगे, तो ये स्थिति आपको, हम सबको ऑनर से पास कराएगी, पास विद ऑनर बनाएगी, और वर्तमान में भी हमारे स्वरूप से दोनों बाप का साक्षात्कार होगा। इसको हम इतना ऐसा नहीं है कि खाली सुन लें, लेकिन हम उसको अभ्यास करने का संकल्प लें, दृढ़ता से रखें कि नहीं, हमने अभ्यास करना है। शुरू में हो सकता है, क्योंकि बाबा कहता है बिंदु का मतलब क्या है, सब तरफ से समेट लेना। अब बहुत कुछ मेरी आंखें देख रही हैं, सुन रही हैं, अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार के लोग आ रहे हैं, बट फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा विस्तार नहीं, सार, मुझे क्या करना है, बस जितना मुझे ज़रूरत है उतना लो, फिर न्यारे हो जाओ। और हर बात को जब हम पॉजिटिव भाव से देखते हैं, तो जो हमारा अंदर में भाव होगा वैसा ही हम रिटेन भी करेंगे। तो इस बात का हमें अटेंशन देना है कि अगर हम बिंदु यानी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम ब्रेक नहीं लगता है तो मोड़ देते हैं ना गाड़ी को, तो ऐसे मोड़ने का अभ्यास करें, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने का। और बार बार अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में या व्यर्थ को पॉजिटिव में, समर्थ में, तो धीरे धीरे आपका एक संस्कार बन जाएगा, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा, आपको कभी नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं, सकारात्मक और समर्थ सोच आपके चेहरे की दिव्यता को बढ़ाएगी, अंदर से सुकून अनुभव होगा। तो पहले हम मोल्ड करने का अभ्यास करें, धीरे धीरे फिर सब तरफ से अपने आप को डिटैच करके बिंदु स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें, एकांतवासी बनकर। और दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब क्या है कि एक पर एकाग्र होना, एक पर एकाग्र होना, एक लक्ष्य की ओर अपने आप को एकाग्र कर लेना। अभी क्या है, बुद्धि बहुत भटकती है, लेकिन मेरा मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, इसका भटकना बंद हो जाए। बाबा ने कहा ना कोई श्रेष्ठ स्वमान आप लें और सवेरे से लेकर रात्रि तक उस स्वमान में स्थित होने का अभ्यास करें। जब आप उस स्वमान में स्थित होने का अभ्यास कर रहे हैं, कर्म में उस चीज को ला रहे हैं, तो आप बैठेंगे तो आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, यहां से बाहर गए किसी ने कुछ कह दिया तो हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। अभी अभ्यास करें, पहले चेक करें कि दिन में मेरी स्थिति कितनी बार नीचे आती है, और फिर मैं उस बात के लिए जिम्मेदार किसको ठहराती हूं, क्योंकि बात निकली अपने पर काम करना है। जब भी हम लो फील करते हैं, मेरी इमोशंस और फीलिंग्स नीचे आ जाती हैं, तो मैं कहती हूँ आज इसने मेरे से ऐसी बात कही, मेरे को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हूँ। अर्जुन का मिसाल आप सबने सुना है ना, सुना है कि उसको एक ही बात कही गई थी कि भाई आपको पक्षी की जो आँख में वो छोटा सा बिंदु है और उसमें डॉट, उसके सिवाय और ये पूरे पेड़ के टहनियाँ पत्ते कुछ भी दिखाई नहीं देने चाहिए। कितना अभ्यास किया होगा तब वो नंबर वन धनुर्धारी योद्धा बना। ऐसे मुझे एक के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न खोए। आपने गीत सुना है ना, ख्यालों में बाबा ख्वाबों में बाबा, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, सुना होगा ना गीत। ख्यालों में बाबा, ख्वाबों में बाबा। तो जब हम एक लक्ष्य को साध लेते हैं तो आपकी नजरों में कौन दिखाई देगा? जब आप किसी से बात करेंगे बाबा ही दिखाई देगा, होगी ना प्रत्यक्षता, है ना? तो इसलिए हमें, जैसे भक्ति में भी मीरा ने अपनी दृष्टि में अपने इष्ट को प्रत्यक्ष किया, महावीर पवन पुत्र हनुमान के लिए कहते हैं कि उसने जब अपने दिल को खोल कर दिखाया तो श्री राम की युगल छवि को देखा। तो अगर भक्ति का इतना बड़ा यादगार जो विश्वव्यापी हो सकता है, बाबा कहते हैं यादगार तो आपके हैं ना बच्चे, आपका ही तो यादगार है, कोई आपके दिल को खोल के देखे तो बाबा के सिवाय कोई नजर ना आए, आपकी नजरों में देखे तो बाबा ही दिखाई दे। लौकिक में भी कहते हैं भाई ये तो अपने बाप पे गया है पूरा, है ना, इसका बोलना देखो, इसका हर बात, इस तो अपने बाप जैसा लगता है। हमें भी कोई ऐसा कह दे कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि ये तो शिव बाबा जैसे लगते हैं, ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं। अभी देखो गुलजार दादी थे ना, तो हम दादी के पास जाते थे तो हमें हमेशा दादी के कमरे में वो दादी बाप दादा का फोटो लगा होता था, तो दादी का भी लगा होता था, कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता था। मैं बोलती थी दादी ये तो जो है आपका स्वरूप, ये मुझे ये वाला बहुत पसंद है। तो दादी कहती है कि क्योंकि वो बाप दादा का स्वरूप होता था, कई बार बाप दादा के स्वरूप से हम दादी का स्वरूप देखते थे। तो मैं दादी को बोल रही थी, मैंने कहा दादी आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मुझे तो नहीं पता चलता, मैं तो आपके अंदर हमेशा ही बाप दादा को देखती हूँ, कारण क्या था? बिल्कुल शांत, निश्चिंत, निश्चल, निरसंकल्प, टोटल डेडिकेशन, समर्पणमयता। मैं और मेरे को खत्म कर चुके थे वो,
जी।
ऐसा स्वरूप हमें बनाना है जो हमारे स्वरूप में बाबा दिखाई दे। तो उसके लिए चाहिए एक व्रता, दूजा व्रता नहीं, जिसको एक नामी कहें या एक व्रता कहें, केवल एक की ही याद। और उसके लिए बाकी जो दैहिक बंधन हैं, संबंध हैं, उन सब से बुद्धि योग पूरी तरह से निकला हुआ हो। इसीलिए आपने महसूस किया होगा, जब बाबा साकार में थे, बच्चे बाबा के पास आते थे तो बाबा याद दिलाते थे बीच बीच में, बच्चे किसके पास आए हो, बच्चे किसके साथ चल रहे हो, किसके साथ खा रहे हो। अब इसका पूछने का अर्थ क्या था बाबा का, क्योंकि उनको मुरली सुनते सुनते कभी कभी बाबा का शरीर दिखाई देता था, फिर बाबा याद दिलाते थे, बच्चे ये मेरा वृद्ध तन है, मैंने बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इसमें प्रवेश किया है, ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता था, मैंने ही आके इनको बताया है। तो बाबा ये अंतर समझाते थे, फिर बाबा भी कहते बच्चे उसको याद करो, क्योंकि बीच बीच में हमें क्या दिखाई देने लगता है, क्या नजर आने लगता है, बाबा की जगह जो बैठा है वो दिखाई देता है। तो बार बार जब सैर पे बाबा जाते थे, बच्चों की उंगली पकड़ के जाते थे, बाबा स्पीड से थोड़ा जल्दी चढ़ के पहाड़ी चढ़ते थे, बच्चे देखो डबल इंजन है ना बाबा और मैं, इसलिए बाबा आपसे ज्यादा स्पीड से जाते हैं, हमेशा बाबा को याद रहता था कि मेरे साथ कौन है, मैं और बाबा कंबाइंड, आज भी था ना, मैं और बाबा कंबाइंड, मैं अकेला नहीं हूं। जब मेरे साथ बाबा है, सर्वशक्तिवान है, और मैं उसके साथ का अनुभव कर रही हूं, तो आप देखेंगे जो भी आएगा उसको मेरे से वही फील आएगी। अभी तक क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम बाबा को साथ नहीं रखते हैं, और इसलिए हमें कभी कभी अपने कार्य करने में संशय भी होता है कि कर तो रहे हैं, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलनी तो चाहिए, वैसे मैंने बाबा को कहा तो है, अब देखो योग तो कर रहे हैं हम, अपने आप में ही हम डाउट करते हैं। लेकिन हम इतने ज़्यादा बाबा के जैसे प्यार में डूब जाएं कि हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों एक हो जाएं, जिसको भक्ति में क्या बोला, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो गई, उसके प्यार में खो गई, है ना, ऐसा स्वरूप। उसके लिए हमें सब तरह के आकर्षणों से मुक्त, कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। तभी बाबा ने आज खास का देह देह का संबंध, कोई चीज का शौक है या कोई आकर्षण है, बच्चे इससे तुम्हारी बुद्धि बाहर आ जानी चाहिए, तब तुम बाबा की याद में रह पाओगे। तो ये अभ्यास करना है, और अगर कभी ज़रूरी बात है कि इतना माइन्यूटली हम अभ्यास करते नहीं हैं, करते भी हैं तो हम थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप पर लगातार काम करेंगे तो आप थोड़े समय महसूस करेंगे आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आ गया है, बाबा की मदद मिलती है। ऐसे ही हम सबको क्या करना है, एक रस, एक का पाठ है ना, एक रस स्थिति। एक रस का मतलब है एक से ही सारे रस लेना। ऐसे तो बहुत सारे हमारे शरीर के इंद्रिय रस बहुत ज्यादा हैं, खाने का रस, देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, बहुत सारे रस हैं। कईयों को बोलने की आदत होती है, वो बिना बोले ना उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, अनइजी फील होता है। वो कहते हैं मेरे को तो घुटन महसूस हो रही है, मैं तो अपने को एक्सपोज ही नहीं कर पाया, जो ज़्यादा बात करते हैं। बोलने का भी रस है उनको, कईयों को सुनने का रस होता है। इधर उधर की चर्चा जब तक सुनेंगे नहीं ना, वो सुनाएगा फिर कहेंगे अच्छा फिर, अच्छा फिर, अच्छा फिर। फोन पे बात करेंगे तो आधे पौने घंटे से पहले बात पूरी नहीं होगी। तो आप देखो हमारा टाइम कितना जा रहा है। जैसे जीभ रस है, हास्य रस है, आप देखेंगे हंसेंगे भी तो बाह्य मुक्ता में, समझते टाइम अच्छा पास हो गया। लेकिन हमारे पास इतना प्रीशियस टाइम है इस काम के लिए थोड़ी है, हमने तो बहुत काम करना है। इस काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जितने भी इंद्रियों से संबंधित रस हैं, इन सब से अपनी बुद्धि को निकालकर एक रस, एक के रस में। और जब आप एक के रस में चले गए ना, तो वो रस आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा, इंद्रियों से परे की स्थिति का अनुभव कराएगा, सुपर सेंसियस जॉय। जैसे वो आपके मन का मोर नाचना शुरू करेगा, जैसे श्री कृष्ण को हमेशा डांसिंग पोज में दिखाते हैं ना, जो हमारे संपूर्ण स्वरूप का यादगार है, डांसिंग पोज। ऐसे आपके मन का मोर नाचता रहेगा, आप सदा ही अतीन्द्रिय सुख में हैं। कभी उदास, हताश, दिल शिकस्त, परेशान नहीं। आपने देखा होगा श्री कृष्ण को क्या दिखाते हैं, श्री नारायण जो उनका ही स्वरूप है, उसको शेषनाग की शैया पर मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। तो उसका मतलब क्षीर सागर में, क्षीर सागर द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और शेषनाग का मतलब जो उसके भक्षक थे वो रक्षक बन गए, उसने उसको अपनी शैया बना लिया। और उन पांच विकारों को, यानी कोई भी विकराल परिस्थितियां जो विकार के वश आती हैं, तमोगुणी परिस्थितियां, उसमें भी वो निश्चिंत मुस्कुराते हुए उसने बड़ी कंफर्ट्स के साथ उसको पार किया। स्ट्रगल में नहीं, संघर्ष नहीं। आज हमने देखा ज्ञान में आने के बाद बात एक ही होती है, कोई इस बात को परिस्थिति के रूप में वर्णन करते हैं कि बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी परिस्थिति है, कोई कहते हैं कोई बात है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो ख्याल तो सारा क्या है, एटीट्यूडनल चेंज और बाबा से प्राप्त हुई शक्ति। जितनी हम में शक्ति होगी, हम शक्तिशाली होंगे, उतना हम हंसते हंसते कोई भी बात आएगी पार कर लेंगे। इसलिए हमारे इस यादगार में क्या दिखाया है, बिल्कुल क्षीर सागर में मुस्कुराते हुए, निश्चिंत, एडवर्स सिचुएशन में भी जो आपके भक्षक थे वो आपके रक्षक बन गए, रादर सेवाधारी बन गए आपके। ये स्थिति जब हमारी आए तो देखो दर्शन की भीड़ लग जाएगी, है ना, स्पेशल लोग दर्शन के लिए जाते हैं ना। तो उसके लिए काम किस पे करना है, अपने पर काम करना है, ये बाहर की बात नहीं है। तो ये है हमारे अंदर में ऐसा स्वरूप और ऐसा स्वमान हो, एक व्रता और इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है एक नामी इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब है बचत। हम जितने भी खजाने हैं, एक हम स्कीम बनाएं बचत की, चाहे संकल्पों का खजाना है, चाहे वाचा का खजाना है, चाहे हमारा समय का खजाना है, श्वास का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, ये सारे खजाने भगवान ने मुझे दिए हैं। अब मुझे क्या करना है? कम खर्च बाला नशीन, मुझे इसका इस्तेमाल कम करना पड़े और सफलता ज़्यादा मिले। तो बाबा ने कई बार कहा कि जो शब्द हैं बच्चे, 10 शब्द की जगह अगर आप 2 शब्द कह सकते हैं तो उतना ही कहें, लेकिन वो सार स्वरूप में आपकी बात कौन समझ पाएगा जब आप स्वयं सार स्वरूप में स्थित होंगे। ठीक है, तो संकल्प की इकोनॉमी, संकल्प सकारात्मक हो, शक्तिशाली हो, पॉजिटिव एंड पावरफुल और एलिवेटेड थॉट्स, और सिद्ध होने वाले संकल्प, उसके लिए मुझे संकल्पों को क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड को कम करना है, अभ्यास करें, अटेंशन दें कि इतना स्पीड क्यों चल रही है संकल्प की, आंतरिक शक्ति क्षीण हो रही है। और ऐसे ही शब्द भी हमारे, उसकी भी इकोनॉमी, और हमारे शब्द जो है वो दूसरों के लिए क्या काम करे, हमारे बोल आशीर्वाद के बोल हों, आशीर्वाद के बोल हों, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल हों। तो जब आपके मुख से आशीर्वाद के बोल निकलेंगे, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले होंगे, तो लोग आपसे ब्लेसिंग्स लेने आएंगे, कहेंगे ये तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहेंगे आप हमारे लिए 2 महावाक्य उच्चारण करें, आप हमें ब्लेस करें। कब होगा? जब हमारे मुख पर नियंत्रण है। ऐसे ही हमारा कर्म प्रेरणादायी हो, आपको सभी कोट करें आपके कर्म को, जैसे अभी हम दादियों के कर्मों को कोट करते हैं, दादी ऐसे करते थे, बाबा ऐसे कहते थे, ऐसे ही लोग कोट करें। उसके लिए क्या होगा कि कर्म जो है सुख देने वाले हो, सुख दो, सुख लो, दुआएं दो, दुआएं लो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो मेरे को बद्दुआ मिले। ध्यान देना है, इकोनॉमी करते जाओ उतना ही, ऐसे ही समय का खजाना। कई बार हम किसी से बात करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम निकल गया कितना, आपको अटेंशन रहे मुझे इतनी बात करके फिनिश, समय वेस्ट नहीं करना। और बाकी जब बचत आपकी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बाबा ने तो कहा कि संगम का 1-1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, बच्चे जितने सेकंड वेस्ट किए ना उतने वर्ष वेस्ट कर दिए। बहुत ध्यान देना है, ये समय हाथ से निकल गया पछताना पड़ेगा। तो हर चीज़ के खजाने को मुझे सेव करना है, और जब ये खजाने हम जमा करेंगे तो डेफिनेटली शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे, और फिर आप दाता बनकर देते रहेंगे। दाता अर्थात, तो ये हमारा दाता का स्वरूप जब होगा तो ही प्रत्यक्षता होगी। और बाबा ने कहा ये अखुट लंगर चलता रहे, जो भी आत्मा तुम्हारे सामने आए वो कुछ लेकर जाए, जिस भी चीज की आवश्यकता है, किसी को सहन शक्ति चाहिए, किसी को समाने की शक्ति चाहिए, किसी को धैर्यता चाहिए, है ना, कोई ना कोई निर्णय लेने की शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, अपने आप को सब तरफ से विड्रॉ करके मन को एकाग्र करना है वो शक्ति चाहिए। जो सोच के आया है आपकी दृष्टि ले और तथास्तु का वरदान लेकर जाए। अब बताएं उसके लिए चाहिए कि नहीं अपने को शक्ति अंदर में जमा? अगर मेरे पास स्टॉक ही जमा नहीं होगा तो आप सोचो हम कैसे देंगे किसी को, मेरा तो स्टॉक खाली है, मैं कैसे दूंगी किसी को? तो बाबा कहते अपने पास स्टॉक जमा करो, तो स्टॉक वही करेगा जो फुल स्टॉप लगाने की आदती होगा ना, जो फुल स्टॉप लगाता है वही शक्तियों का स्टॉक जमा कर सकता है। जिसको स्टॉप करने की आदत नहीं है वो स्टॉक जमा नहीं कर सकता और उसका अखुट लंगर नहीं चलेगा, है ना। यही फिर भक्त बनकर आपके मंदिरों में आपका कीर्तन करेंगे और संगम पर भी आपको अपना इष्ट स्वीकार करेंगे और सोचेंगे कि इनको बनाने वाला कौन है। तो बाबा ने कहा ये जब स्थिति आपकी आएगी, दातापन की स्थिति, दाता कौन बन सकता है जिसका स्वयं के प्रति कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने आप को देखो, अभी कुछ इच्छाएं रही तो नहीं है। मेरे ख्याल में ब्राह्मणों में शायद, वैसे तो लाइफस्टाइल बड़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा और चीज़ों के शौकीन तो नहीं है, लेकिन ये नाम मान शान ये सब इच्छा तो है। और बाबा ने, हम भक्ति में एक गीत सुनते थे, नहीं मैं मान की भूखी नहीं परवाह शोहरत की, तेरा एक नाम रह जाए मुझे गुमनाम रहने दे। नहीं मैं मान की भूखी नहीं परवाह शोहरत की, केवल एक तेरा नाम मेरे दिल में रहे और मुझे गुमनाम कर दे। ये भक्त लोग गाते हैं और हम कौन है, हम कौन है। अब आप सोचिए, जैसे बीज ने अपने को गुप्त किया तो ये वृक्ष का विस्तार हुआ। अब वृक्ष अपने को जब गुप्त करेगा तभी तो बीज ऊपर प्रत्यक्ष होगा। जब हम ही अपना नाम के लिए आगे आते रहेंगे तो फिर बीज बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। तो जब भी हम ज्ञान या कोई सेवा कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, तो एक तो सदा कहें शुक्रिया बाबा। क्या आदत डालनी है, क्या आदत डालनी है, क्योंकि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, जरूर मिलेगा, साधन भी मिलेंगे। तो साधन मिलते साधना खत्म ना हो ये ध्यान देना है। आपके पास साधन नहीं है फिर आप साधना कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन साधन होते भी आप साधना छोड़ते नहीं। अभी देखो मधुबन में मेरे को बहुत बार ख्याल आता है, जब मैं यहाँ से होके जाती हूँ, मैं बहुत मोटिवेशन लेके जाती हूँ बाबा के घर से। जैसे मेरे को आता है कि जब दादियाँ, बाबा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियाँ आए, दादियों के बाद अब हमारी दीदियाँ हैं, तो मैं सोच रही थी कि भाई इतना अच्छा, बहुत सुंदर स्वचलित कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ज़रा भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है। ऑफ कोर्स हमारी दादियों का सकाश, बाबा का सकाश बच्चों को मिल रहा है, लेकिन जो बाबा ने मर्यादा और श्रीमत बताई है आज उसका अनुसरण हमारी दीदियाँ भी उसको फॉलो कर रही हैं। अमृत वेले 3:30 बजे योग यहाँ होना ही चाहिए, जैसे प्रोग्राम चल रहे थे वैसे चलने चाहिए। तो जब योग, मुरली, जो दिन भर दिनचर्या का डिसिप्लिन है वो एक्यूरेट हूबहू चलेगा तो क्या बाबा की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, बताएं। ऐसे ही अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने अपने स्थानों पर बाबा की ब्लेसिंग्स सदा हम पर बरसती रहे, तो हमें केवल एक ही काम करना है कि बाबा ने जो हमारे लिए नियम मर्यादाएं बना के रखी हैं केवल हम उसे अपने अंदर में करते रहें और दूसरों से कराते रहें, बस। और हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, बाकी काम बाबा करेगा। उससे पता चलता है कि चलाने वाला कौन है, सर्वशक्तिवान बाबा। तो ये चीज का अनुभव मैं बहुत प्रेरणा लेके जाती हूं कि कैसे आज भी बाबा का कार्य महसूस होता है कि स्वयं भगवान अपना काम करवा रहा है। सभी एक दूसरे के को एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर एक मत होकर चल रहे हैं। और लास्ट में एक मत की बात आती है, एक मत है ना, एक मत मतलब हम सब एक की ही मत पे चलते हैं, इसलिए हम सबकी एक मत है ना, एक मत। हाथ उठाएं, कौन कहते हैं ये एक मत है ना। इनमें से भी अगर किसी की, किसी और की मत पर बीच में संकल्प आ गया चलने का, माया की मत, तो फिर वो थोड़ा सा परिवार से अपने को अलग समझने लगता है। लेकिन जब हम एक की मत पर चलते हैं तो हम सारे एक मत हो जाते हैं। अभी देखो मीटिंग में कितने सारे भाई बहन आए हैं, और पार्लियामेंट सेशन में आप देखते हैं क्या होता है, आपको ज़्यादा डिटेल पता है। और यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से बहनें आई हैं, इंडिया की तो हैं लेकिन बीच में हमारी बाहर की बहनें भी हैं, लेकिन इतना स्मूथली है, इतना प्रेम प्यार से जो स्ट्रेटजी बना के दे देते हैं। सबको अपना विचार देने की स्वतंत्रता है, लेकिन फाइनल होने के बाद सबने एक ही फॉर्मूला बनाया है, बालिक सो मालिक। मालिक बन के विचार दो और सर्वसम्मति से जो फाइनल हो जाए उसमें बालक बन जाओ, वो सारे के सारे संतुष्ट है, बहुत अच्छा चलता है और कम समय में आउटकम ज्यादा निकलता है और बड़े बड़े प्लान बन जाते हैं। बाबा का कार्य इतना अमेजिंग होता है, देख देख के लगता है कि कितना जबरदस्त सब बाबा के बच्चे काम में लगे हुए हैं, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, इतना बुद्धि चला रहे हैं। तो आखिर ये डिविनिटी कहाँ से आ रही है? अगर इसमें डिविनिटी ना हो तो आपस में आइडियाज क्लैश भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई आइडियाज क्लैश होने वाली बात ही नहीं है। ये कल्चर है यहाँ का, संस्कृति है। और जब एक मत का संगठन हमारा प्रत्यक्ष होगा तभी बाप दादा प्रत्यक्ष होंगे कि इतने बड़े संगठन को चलाने वाला कौन है। जरूर भगवान है। तो बाबा ने कहा ये सब पाठ पक्का करो, ठीक है? तो हम सब क्या याद रखेंगे? एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी या एकव्रता, इकोनॉमी और एकता। और एक मत पर हम सब चलते हैं तो हमारी से एकता प्रत्यक्ष होती है। तो अभी हर एक अपने आप को देखे, 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। ये अपने पर काम करने की बातें हैं, जब हम अपने पर काम करेंगे तब जाके हमारे चलन और चेहरे से वो रॉयल्टी, वो रुहाब, वो रूहानियत छलकेगी और बाबा प्रत्यक्ष होगा, वो पवित्रता, वो दिव्यता दिखाई देगी। तो अभी हम 5 मिनट इस चीज का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर के लिए। अपने आप को सब तरफ से समेट लें, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा, सर्व कर्म इंद्रियों का राजा, मन बुद्धि और संस्कार के मालिक, मैं आत्मा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे और सर्व के प्यारे, सब बाह्य प्रभाव से मुक्त मैं आत्मा, अपने बुद्धि रूपी विमान पर बैठकर उठ चली अपने वतन की ओर। अब ये बुद्धि रूपी विमान अंतवाहक शरीर के द्वारा अपनी उड़ान भर चुका है। मैं आत्मा इस साकार दुनिया को पार करते हुए सूर्य चांद की दुनिया से पार सूक्ष्म लोक में पहुंच गई हूं। यहां मैं आत्मा अपनी पवित्रता और दिव्यता से संपन्न चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूं। कितना सुंदर है मेरा यह दिव्य स्वरूप। डबल लाइट स्वरूप, कितना हल्कापन, अब मैं आत्मा मेरे प्यारे फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के सन्मुख हूं। बाप दादा वरदानी दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं। मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। उनकी सूक्ष्म सकाश वरदानी दृष्टि मेरी पवित्रता और दिव्यता की चमक को और अधिक बढ़ा रही है। अब मैं अपना इस फरिश्ता स्वरूप यहां छोड़कर पहुंच जाती हूं अपने असली धाम, शांति धाम। जहां असीम शांति शांति है, जहां बाबा बीज स्वरूप बाबा बिंदु रूप में विराजमान है। बिंदु बाप के सन्मुख मैं भी बिंदु बनकर बैठ जाती हूं। महसूस करें रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु के समान, मेरे प्यारे बाबा मीठे बाबा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, तीसरे नेत्र से इस बिंदु को निहारिए। जो शांति के, प्रेम के, आनंद के सागर हैं, सिंधु हैं, चले जाएं शांति सागर की गहराई में, अनुभव करें इस शांति की महान शक्ति को। कितना सुंदर अनुभव है, कितनी शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा इस दिव्य शांति और शक्ति को स्वयं में समाये हुए लौट आती हूँ। इस साकार सृष्टि पर और भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हो जाती हूँ। अपने इस यात्रा में मैं आत्मा शांति दूत बनकर आई हूं। मुझे अपने बाप के गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार में आना है और अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है। यही मेरा दृढ़ संकल्प है। जिसे मैं निभाती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। दीदी ने जो क्लास अभी कराया, आप सभी थोड़ा सा बैठेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट 5 दिल्ली की तरफ से सरोज दीदी ने लिया है, और हम उसको कैसे इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं वो आपको बताते हैं, और उसके बाद हमारी मीनू बहन है आगे की जो अनाउंसमेंट है मीनू बहन आपके बीच में करेंगे। जस्ट क्योंकि शांति का इतना सुंदर हमने अभ्यास किया तो बोलने का तो वैसे ही मन नहीं होता, तो हम ये वाला जो शांति मेरा स्वधर्म हम बीकेज में ले रहे हैं, पीस माय रिलीजन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई ने एक फ्लायर भी लगाया होगा पीछे, शांति पीस माय नेचर। तो ये वाला हम पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली NCR में लेंगे, और इसमें जो भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रखी हैं क्योंकि सेंटर पर जब हम भाई बहनें आते हैं मॉर्निंग मुरली के टाइम पर, तो उससे पहले भी हम मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद भी हम मेडिटेशन करते हैं, और उस तरीके से हमने इसको लिया है। आपको वो सारी प्लानिंग और वो सब हम आपको देंगे, कैसे कैसे जुड़ना है वो आप इसका जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें करना चाहिए। तो आप पीछे मैं बैठी हूँ, आप हमें नंबर लिखवा सकते हैं, मीनू बहन भी बैठे हैं, मीनू बहन को भी नंबर आप लिखवा सकते हैं। तो हमारा ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, उसको ये चलाएंगे। तो इसमें जो एडवाइज़र के रूप से इस प्रोजेक्ट में रहेंगे आदरणीय आशा दीदी जो ORC के डायरेक्टर हैं, गाइड के रूप से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ सरोज दीदी रहेंगे जिन्होंने अभी बहुत सुंदर क्लास भी हमें कराया और हमें गाइड भी किया कि कैसे हम मेडिटेशन सेंटर पर BK भाई बहनों को उसकी अनुभूति कराएं। मेन है पीस प्रोजेक्ट का कि स्वधर्म में रहें और उसकी अनुभूति हम अपने स्वरूप से कराएं। तो अमृत वेले से हम शुरू करते हैं। अमृत वेले आपको रात को ही 10 बजे के करीब या 9:30 बजे के करीब अव्यक्त मुरली से जो शांति का बाबा ने कहा है, शांति मेरा स्वधर्म, शांति माय रिलीजन, ये तो नेचर है। अगर हम BKs की बात करेंगे तो हम रिलीजन की बात करेंगे, बट ये प्रोजेक्ट आप नॉन BK और BK दोनों में अच्छे से चला सकते हैं। दिल्ली में कम से कम इसमें 22 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स दिल्ली NCR के लेवल पे सभी सेंटर्स की बहनें कर चुकी हैं, लेकिन हमारी सरोज दीदी का मन था कि हम यही वाला प्रोजेक्ट क्यों ना नेशनल लेवल पे हम करें। तो श्रीकांत भाई ने बोला कि ये और अच्छा है कि ये BK भाई बहने शांति क्या है, शांति के स्वधर्म में कैसे आए, उसके ऊपर हम इसको लेके जाएं। तो अमृत वेले आपको एक रात को आपको एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में मिलेगा, और मुरली के टाइम पर, मुरली में जब आप आएंगे तो मुरली से पहले भी हम आपको एक शांति का क्या है वो आपको देंगे। और सबसे ईजी के हर महीने में हम मेडिटेशन, वर्ल्ड मेडिटेशन होता है हमारा, तीसरा रविवार सभी सेंटर्स पे होता है, योग भी होता है। तो तीसरे रविवार वाले दिन BK भाई बहने इसकी वर्कशॉप कर सकते हैं। वर्कशॉप में आप क्या करेंगे वो हम आपको भेज देंगे प्रश्न, बस आपको वहाँ पर अपने सेंटर की दीदी को बताना है, और सेंटर पे ये बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे उसमें से एक पॉइंट लेके आप अपने अंदर उसकी चेकिंग पॉइंट ले सकते हैं। वो चेकिंग पॉइंट भी आपको हम देंगे। इसमें ये प्रोजेक्ट 10 मंथ्स के लिए रखेंगे और 2 महीना सिर्फ रिविजन चलेगा। जब हम नेक्स्ट एनुअल मीटिंग में आएंगे तब हम आपके सामने उस चीज़ को वापस से लेकर आएंगे। तो बहुत सारा मैं बताऊंगी तो शायद आप भूल जाएंगे। सिर्फ आप इस वाले फ्लायर को देख रहे हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फ्लायर सब जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पर पीस माय रिलीजन होगा बीके भाई बहनों के लिए, क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है। जो दिल्ली में चल रहा है अभी तक वो नॉन बीकेस के लिए, बीके भाई बहनों के लिए यही चल रहा है। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होएगा, पीस माय नेचर, क्योंकि जो नॉन बी के भाई बहने हैं वो थोड़ा रिलीजन से कनेक्ट जल्दी नहीं होते, तो उनके लिए पीस माई नेचर है। उसका पूरा नॉन बी के इसका मॉड्यूल सब तैयार है, बी के भाई बहनों का हम तैयार करके जून से इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, क्योंकि जून में पूरा का पूरा जो हमारा जून मास चलता है वो ऑलरेडी सभी इंटरनेशनल योग, पता है ना आपको, सभी योगा कराते हैं, योग कराते हैं, अलग अलग लेवल पे चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा योग को प्रमोट किया है, तो जून से इस प्रोजेक्ट को हम शुरू करेंगे आप सबके साथ भी। तब तक हमारी सब चीज़ें तैयार भी हो जाएगा। तो जो पहला मंथ रहेगा जून का, सिर्फ वो मैं आपके सामने बता रही हूँ, स्वमान की अवेयरनेस, स्वमान में रहकर सम्मान देकर पीस को अनुभव भी करना और पीस की अनुभूति भी कराना। सबको समझ में आया? ठीक है, हाथ उठाएं, सबको समझ में आया? बस एक ही आपको बताएंगे, फिर आपको जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, हमने पूरा 10 महीने का बताया है, स्वमान की अवेयरनेस, वृत्ति की शुद्धि, स्मृति और कनेक्शन तीसरे मंथ में, अगर चौथा मंथ चलेंगे तो कनेक्शन के बाद हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, संस्कार परिवर्तन के बाद हम आ जाएंगे साइलेंस में, साइलेंस के बाद पवित्र दृष्टि, और पवित्र दृष्टि के बाद जो गवर्नमेंट आजकल ले रही है कर्म योग, जब दृष्टि पवित्र होगी तो कर्म योग होगा, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, उसके बाद सेवा भावना, और 9th मंथ में डिटैचमेंट, और लास्ट मंथ में स्थित प्रज्ञ अवस्था, जिसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज की ओर। तो ऐसे हर मंथ का अलग अलग अभ्यास, अलग अलग वो रहेगा, लेकिन हमें सभी प्रोजेक्ट को लेकर, मेरे को पर्सनली एक एक्सपीरियंस है कि भाई बहनें बहुत नहीं कर पाते, क्योंकि सेंटर पर मुरली भी है, योग भी है, तो आपको मुरली के टाइम पर ही करना है। सेंटर पर जब आपका योग का टाइम है तो ही वो चीज़ें हम आपको स्थितियां देंगे, और साथ साथ जब आप कर्म योग की स्थिति में हैं, चाहे घर पर हम पूड़ी बना रहे हैं, चाहे हमारे भाई ऑफिस में हैं उसकी स्थिति, तो ऐसे पूरे दिन में पीस मेरा रिलीजन, ये हम बीके भाई बहनों के लिए इस पूरे वर्ष में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, सरोज दीदी, दीदी को भी पता होगा, दीदी अभी पीस प्रेयर्स शुरू हो गई हैं, क्योंकि नॉन बीकेस के लिए वॉर शुरू हुआ है, तो वहाँ पर पीस प्रेयर्स शुरू हुई हैं, और उन्होंने बीके भाई बहनों को अप्रोच किया है कि जहाँ पर भी हमारे पीस प्रेयर्स चल रही हैं वहाँ पर आप आए। कुछ जगह पर ऐसा हुआ है इंटरनेशनल में, नेशनल में नहीं हुआ, तो इसको अगर हम कलेक्टिवली करेंगे तो ये बहुत अच्छे से, और हम सब भाई बहनें तो करते ही हैं। अभी दीदी ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो कराया वो हम बहनें तो ऑलरेडी कराती हैं सेंटर पर, तो वो आपका प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंक्लूड है, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, अलग से कुछ भी नहीं है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सिर्फ पीस मेरा रिलीजन, ये बीके भाई बहनों के लिए। और नॉन बीके के लिए भी आप अगर करें तो उसकी भी रिपोर्टिंग आप हमें दे देंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिल्ली में आशा दीदी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया ही हुआ है। तो ऐसे करके हम इस प्रोजेक्ट को आपके मध्य चलाएंगे, और इसमें क्विज भी होगी, मंथ में क्विज करेंगे, मंथ में सबके साथ इन्वॉल्व होके बीकेस के साथ मंथन जो होगा वर्कशॉप का वो हम ऑनलाइन आपके साथ करेंगे, ताकि उसमें हमारी सरोज दीदी भी होंगे, आदरणीय आशा दीदी भी होंगे, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप दीदियों से पूछें, दीदी आपको उनका आंसर देंगे महीने में एक बार। ओके सबको,
तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सारा ज्ञान ही शांति पर है, तो हम शांति के ही लेवल पर लेकर, पर शांति क्या है नहीं, शांति में आ जाना और शांति स्थिति में अपने आप को कर देना, ये पूरे प्रोजेक्ट का सार आपके मध्य रखा है। दीदी और कुछ आप कहेंगे? कोऑर्डिनेटर के रूप में, जैसे गाइड के रूप में दीदी हैं, फैसिलिटेटर के रूप में हमारी एकता बहन है, और भी हमारे दिल्ली की बहनें उसमें इन्वॉल्व होंगी, उनका नाम भी हम आपको बता देंगे जल्दी ही। तो कोऑर्डिनेटर के रूप में हम आपके सामने, ईशु बहन, हमारी मीनू बहन भी हैं, तो हम दोनों बहनें कोऑर्डिनेटर के रूप में इसकी सेवा करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप आएं। इसका एक ग्रुप बना है, तो ग्रुप का लिंक हम आपको भी भेजेंगे, लेकिन हम, आप सब इतने सारे हैं, हम किसको भेजें? तो आप पीछे बैक स्टेज आ जाएं, या अभी क्लास के बाद यहाँ मिल लें। फ़ोन नंबर या तो आप हमारा लिख लीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, 9696506911010, 9650692110। और मीनू बहन भी होंगे, अगर हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मीनू बहन का भी हम नंबर आपको लिखवा देते हैं। मीनू बहन,
8181303124 16, 80 8180312416। क्या कह रहे?
ठीक है, अच्छा, 96, कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ो, 9650691110, ठीक है, 2110, ये इस पे लिखा हुआ है, बट कोई नहीं, आप आ जाओ तो मेरे को यहीं पे आप लिखवा देंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम आपको बताना भूल गए, आप सेंटर पर पीस वॉक होती है ना, तो हम बीके भाई बहने जब झंडे के टाइम पर प्रभात फेरियां करते हैं, वो सबको बहुत एनर्जी देता है, तो वो भी इसमें है। उसका भी कैसे करेंगे, महीने का एक या दो महीने में एक बार आप उसको पीस वॉक भी बीके भाई बहनों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 21 सितंबर को, क्योंकि नॉन बीके का प्रोग्राम हम 21 को पूरा करेंगे, क्योंकि 21 सितंबर को पीस, वर्ल्ड पीस डे होता है, तो उस दिन 21 सितंबर को मंडे रहेगा, 20 तारीख को संडे रहेगा, तो आप 20 सितंबर को तो लिख लीजिए अपने अपने जोन में, अपने अपने सेंटर पर वर्ल्ड पीस डे वाले दिन, चाहे आप बीके भाई बहनों के लिए अच्छे से वर्कशॉप कर दे, चाहे नॉन बीके के लिए कर दे, लेकिन करना है। वो वाला जो डाटाबेस होता है वो सारा गवर्नमेंट को जाता है, तो गवर्नमेंट, हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना हम गवर्नमेंट तक इस चीज़ को लेके जाए कि शांति की प्रेयर्स, शांति क्या है, ये हम ऑलरेडी बीके भाई बहने तो कर ही रहे हैं। और हमारी वाइट साड़ी तो किसका डिपिक्शन है, शांति का ही है ना, तो सबसे अच्छी बात तो वही हो गया, तो वो आपको करना ही है 20 सितंबर को, तो करना ही करना है, क्योंकि 21 को मंडे है तो बहने नहीं कर पाएंगे, 20 को संडे है तो आप करेंगे। बाकी ऐसा नहीं सिर्फ 20 को करना है, बाकी आप पूरे दिन में कभी भी आपको सैटरडे संडे मंडे आपको लगे आप करें। इसकी फिर एक मीटिंग हम सरोज दीदी के साथ करेंगे, तो मैं, मीनू बहन अभी यहाँ बैठे हैं, जिनको आना है आएं, और हम आपको लिंक भी भेज देंगे, अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मीनू बहन आगे का अनाउंसमेंट।
ओम शांति। सबसे पहले तो हम हमारे आदरणीय सरोज दीदी जी का दिल से बहुत बहुत थैंक्स करेंगे, एक हाथ की ताली से धन्यवाद करेंगे। और मैं दीदी जी के बारे में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आदरणीय दीदी जी हमारे दिल्ली जोन की एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं, तो उसके लिए भी दीदी का बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं जो दीदी ने अभी हमें क्लास कराया, कैसे हमें बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, फल से बीज और फिर से एक नया वृक्ष अगर तैयार करना है तो उसकी विधि एक ही बताई, गुप्त होना पड़ेगा। और उसमें दीदी जी ने हमें अंतर्मुखता, एकांतवासी, इकोनॉमी और एकव्रता, इनके इम्पोर्टेंस को बताया, एकाग्रता और एकमत, एकता। दीदी जी ने सभी चीज़ों को बताते हुए, उनके महत्व को बताते हुए कहा कि जब हम ये सारी चीज़ों को अपने ब्राह्मण जीवन के अंदर लेकर आएंगे तो ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। मैं सुन रही थी और दीदी जी बता रहे थे कि मुझे बहुत दिल को टच हुआ कि कैसे शिव बाबा अपने आप को गुप्त रखते हैं, परमधाम निवासी हो जाते हैं और एक नई सृष्टि के वटवृक्ष को तैयार करते हैं और उस पे फल आता है, फल में बीज होता है, लेकिन उस बीज से वृक्ष तभी तैयार होगा जब वो बीज वापस से जमीन के नीचे जाकर गुप्त हो जाएगा। तो हम सभी को अभी नाम मान शान से परे जाकर सिर्फ शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है और प्रत्यक्षता हमारे चेहरे और चलन से होगी। थैंक यू दीदी जी।